27 जून दिन भर दिन सोमवार मैं हूं रेहान फदल। इस्तीफा देने के बाद कैमरन ने पहली बार मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। इटली के प्रधानमंत्री ने पूरे घटनाक्रम पर चिंता प्रकट की।
Quello che però manca oggi è, a mio giudizio, la consapevolezza della gravità della situazione.
जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी का अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास।
मेसी पे बहुत ज्यादा दबाव था और एक वो बहुत पेशेंट अच्छे टेम्परमेंट के आदमी थे, वो बिल्कुल तंग आ चुके, फ्रस्ट्रेटेड होके उन्होंने छोड़ दिया और उन्हें फेडरेशन से भी कभी सपोर्ट नहीं मिला।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन छोड़ने के बाद फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्रियों ने यूरोपीय यूनियन को मजबूत करने का संकल्प लिया है। अपने साझा बयान में जॉ मार्क एरो और फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर ने यूनियन की राजनीतिक योजना को आगे ले जाने की बात कही। आज जर्मनी, फ्रांस और इटली के नेता बर्लिन में ब्रेक्सिट के बारे में चर्चा करने के लिए मिले। राष्ट्रपति एंगेला मार्केल के प्रवक्ता ने कहा कि ब्रिटेन को अलग होने से पहले बातचीत के लिए पर्याप्त समय देना होगा, लेकिन इसमें गतिरोध नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के बारे में पार्टी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की टिप्पणियों को अनुचित करार दिया है। टीवी चैनल टाइम्स नाउ को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि रघुराम राजन किसी से कम देशभक्त नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में उनका कहना था, अगर कोई खुद को व्यवस्था से ऊपर समझता है तो ये गलत है। सीरिया के एक लेबनानी गांव में 4 आत्मघाती हमलों में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। कहा जा रहा है कि आत्मघाती हमलावर को सुरक्षा गार्ड ने चुनौती दी थी, जिसके बाद उसने खुद को बम से उड़ा लिया। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं है कि हमलावरों का निशाना खासतौर से ईसाइयों का गांव था या फिर वो महज वहां से गुजर रहे थे। स्थानीय अधिकारी डैनी अवार्ड ने बताया कि कैसे आत्मघाती हमलावर ने खुद को बम से उड़ाया। हम धमाके की जगह पहुंचे, हमें कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ। तभी तीसरा धमाका हुआ, एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को बम से उड़ा दिया। नगरपालिका के प्रमुख और मैं मिलकर घायलों को संभालने लगे। हमें बहुत आवाजें आ रही थीं और हम जानते थे कि जमीन पर कई लोग घायल पड़े हैं। हम समझ सकते थे कि इनमें से कुछ की मौत हो गई होगी। तभी हमने चौथे आत्मघाती हमलावर को देखा। नगरपालिका के प्रमुख ने उस पर निशाना लगाया और मैंने भी। तभी हमसे महज 5 मीटर की दूरी पर उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। ऊपर वाले का शुक्र है कि हम बच गए। ये थे डैनी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यूरोपीय यूनियन के जनमत संग्रह के दौरान हुई नस्लीय घटनाओं के मद्देनजर ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि असहिष्णुता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ने बताया कि डेविड कैमरन ने अपने मंत्रियों को प्रवासियों के खिलाफ की गई किसी भी असभ्य घटना की निंदा करने को कहा है। इससे पहले ब्रिटेन के मुस्लिम काउंसिल ने वोटों के नतीजे आने के बाद अल्पसंख्यकों के लिए की गई नस्लीय टिप्पणियों की निंदा की थी। हांगकांग हाथी दांत से बनने वाले उत्पादों पर आने वाले 5 साल में पूरी तरह पाबंदी लगाने की योजना बना रहा है। हाथियों की कम होती संख्या को देखते हुए हांगकांग ये कदम उठा रहा है। हालांकि ज्यादातर हाथी दांत के व्यापार पर प्रतिबंध है, लेकिन कुछ उत्पाद अब भी कानूनी तौर पर बेचे जाते हैं। इस व्यापार में हांगकांग की अहम भूमिका है। हाथी दांत के विरोध में कैंपेन चलाने वालों का कहना है कि इस तरह के व्यापार से हाथी दांत की तस्करी को बढ़ावा मिलता है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। शुरुआत करते हैं यूरोप से। यूरोपीय संघ के बाहर निकलने के ब्रिटेन के फैसले के बाद फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्रियों ने ईयू को मजबूत बनाने की कसम खाई है। साझा बयान में जियां मार्क एरा और फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर ने यूरोप में नए राजनीतिक गठबंधन बनाने का आग्रह किया है। आज जर्मनी, फ्रांस और इटली के नेता ब्रिटेन के ईयू छोड़ने के मुद्दे पर बर्लिन में एक बैठक कर रहे हैं। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के एक प्रवक्ता ने कहा है कि ब्रिटेन को ईयू से बाहर निकलने पर वार्ता के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। उधर इस्तीफा देने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक बुलाई है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे विवरण के साथ अमर शर्मा।
जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने यह भी कहा कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के मुद्दे पर गतिरोध नहीं बना रहना चाहिए। पोलैंड के विदेश मंत्री विटोल्ड वेज सिकोवस्की ने अपील की है कि ब्रिटेन को अपने फैसले पर सोचने के लिए समय दिया जाना चाहिए और उस पर यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। इटली के प्रधानमंत्री मैटियो रेंजी ने ईयू से बाहर निकलने के ब्रिटेन के जनमत संग्रह की तुलना यूरोपीय संघ के इतिहास पर पड़े एक बड़े से पत्थर से की है। रोम में सीनेट को संबोधित करते हुए रेंजी ने कहा कि ब्रिटेन को बाहर निकलने की रणनीति पर बातचीत में इतना समय नहीं लेना चाहिए।
Quello che però manca oggi è, a mio giudizio, la consapevolezza.
आज जिस बात का जिक्र नहीं हो रहा है वो इस स्थिति की गंभीरता है। मैं चाहूंगा कि कोई ये नाटक ना करे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, यह सोचने के लिए इतना लंबा समय लग जाए कि एक और जनमत संग्रह हो। ब्रिटेन को जो झटका लगा है वो यूरोप के लिए सबसे बड़ा मौका हो सकता है। ये तभी मुमकिन है जब हम बचाव करने की मुद्रा से बाहर आएं और हम अपने महाद्वीप में एक नई शुरुआत की कोशिश करें।
अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी अगले महीने होने वाली शिखर वार्ता से पहले नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग के साथ वार्ता कर रहे हैं। दोनों ईयू छोड़ने के ब्रिटेन के फैसले का आकलन करने में जुटे हैं क्योंकि ब्रिटेन नाटो का सदस्य है। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि नाटो और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग पहले की तुलना में अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने अपने इस्तीफे के ऐलान के बाद कैबिनेट मंत्रियों के साथ आज अपनी पहली बैठक की। जनमत संग्रह में यूरोपीय संघ छोड़ने के फैसले के बाद कैमरन ने अक्टूबर तक इस्तीफे की घोषणा की थी। कैबिनेट की बैठक में चांसलर ऑफ द एक्सचेकर जॉर्ज ओसबॉर्न शामिल थे। ओसबॉर्न ने इस बात पर जोर दिया है कि ईयू से बाहर आने के बाद भी ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओसबॉर्न ने कहा है कि इस फैसले के साथ ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को सामंजस्य से बैठाना होगा और इसकी मदद के लिए मजबूत वैकल्पिक योजनाएं तैयार हैं। लेकिन वित्तीय बाजार में काफी उथल पुथल मची हुई है। लंदन में बैंक के शेयरों को भारी घाटा हुआ है। इसके मद्देनजर बारक्लेज और आरबीएस बैंक के शेयरों की खरीद फरोख्त को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के फैसले के बाद वहां की सबसे बड़ी विपक्षी लेबर पार्टी में घमासान मच गया है। लेबर पार्टी में दूसरे नंबर के नेता ने कहा है कि जेरेमी कॉर्बिन का पार्टी पर कोई अधिकार नहीं रह गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कॉर्बिन के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। शैडो विदेश मंत्री हिलेरी बेन ने जेरेमी कॉर्बिन के इस्तीफे की मांग की, जिसके बाद बेन को बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद शैडो कैबिनेट के आधा से ज्यादा सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। लेबर पार्टी ने ब्रिटेन के ईयू में रहने का समर्थन किया था। विद्रोही सदस्य पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन से नाराज हैं। उनका आरोप है कि यूरोपीय संघ से देश के बाहर जाने को रोकने के लिए कॉर्बिन ने मजबूती से अभियान नहीं चलाया। उधर ब्रिटेन के विदेश मंत्री फिलिप हैमंड ने कहा है कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के फैसले से यूरोपीय देशों के बाजारों तक उसकी पहुंच घट जाएगी। उनका कहना है कि इससे ब्रिटेन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं ब्रिटेन में व्यापार जगत के दिग्गजों पर एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि उन्हें लगता है कि ईयू से ब्रिटेन के बाहर निकलने पर उनकी कंपनियों को नुकसान पहुंचेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के सर्वेक्षण में पाया गया है कि 1/4 कंपनियां और अधिक कर्मचारियों की भर्ती करने की योजनाओं पर रोक लगाने के बारे में सोच रही हैं। हालांकि सर्वेक्षण में शामिल आधे लोगों ने कहा कि जनमत संग्रह के फैसले से उनकी निवेश योजनाओं पर फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थव्यवस्था की मजबूती के बारे में ब्रिटेन सरकार की ओर से लगातार दिए जा रहे आश्वासन के बावजूद ब्रिटेन के जनमत संग्रह में यूरोपीय संघ छोड़ने के फैसले के बाद वित्तीय बाजार में ज्यादा उथल पुथल मच गई है।
ब्रिटेन के ईयू छोड़ने पर बर्लिन में बैठक।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
रुख करते हैं भारत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयानों से पार्टी और सरकार को असहज करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी पर चुप्पी तोड़ी है। स्वामी को चुप रहने की नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि किसी को भी पार्टी लाइन नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता है। टाइम्स नाउ टेलीविजन को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
मेरी पार्टी में हो या ना हो, फिर भी मैं मानता हूँ इस प्रकार की चीजें अनुचित है। ये जो पब्लिसिटी का शौक है, उससे कभी भी देश का भला नहीं होता है। बहुत जिम्मेवारी से हर किसी ने व्यवहार करना चाहिए। कोई अपने आप को व्यवस्था से बड़ा माने वो गलत है।
प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहला इंटरव्यू दिया है। उन्होंने आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की भी तारीफ की और कहा कि राजन की देशभक्ति किसी से कम नहीं है। वो भारत से प्रेम करते हैं और जहां भी रहेंगे वो भारत के लिए काम करेंगे।
मेरा 2 साल का अनुभव है कि आज जो लोग उनके लिए विवाद करते हैं वे रघुराम राजन जी को अन्याय कर रहे हैं। ऐसा क्यों? मैं बताता हूं। जो लोग कहते हैं, मैं मानता हूं हम में से किसी से भी रघुराम राजन की देशभक्ति जरा भी कम नहीं है। उनके साथ ये अन्याय होगा ये कहना कि किसी पद पर होंगे तभी वो देश की सेवा करेंगे। मैं जितना रघुराम राजन को जानता हूं, वो किसी भी पद पर हो, कहीं पर भी हो, वो भारत की सेवा करने वाला इंसान है, भारत को प्रेम करने वाला इंसान है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इंटरव्यू पर विस्तार से बात करेंगे घटनाचक्र कार्यक्रम में। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में अब अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का जादू नहीं देखने को मिलेगा। कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में चिली के खिलाफ मिली खिताबी हार के बाद मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल को अलविदा कह दिया है। मेसी की गिनती दुनिया के बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ियों में होती है। 2014 के फीफा वर्ल्ड कप, 2015 के कोपा अमेरिका और 2016 के कोपा अमेरिका तक उन्होंने अपनी टीम को खिताबी मुकाबले तक तो पहुंचाया, लेकिन खिताब नहीं जिता सके। 2014 में उन्हें गोल्डन बॉल के खिताब से नवाजा गया था। आदेश कुमार गुप्त की रिपोर्ट।
लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना लूज इन अ मेजर फाइनल फॉर द थर्ड ईयर रनिंग।
पूरी दुनिया के वर्तमान फुटबॉल खिलाड़ियों में महान माने जाने का दमखम रखने वाले लियोनेल मेसी अब अर्जेंटीना के लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। हुआ ये कि न्यू जर्सी के ईस्ट रदरफोर्ड में कल 10 नंबर की जर्सी पहने लियोनेल मेसी कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में चिली के खिलाफ महत्वपूर्ण पेनल्टी शूटआउट में पेनल्टी किक को गोल बॉक्स के बाहर मार बैठे और चिली ने अर्जेंटीना को 4-2 से हरा कर खिताब अपने नाम कर लिया। इस फाइनल मुकाबले में चिली के विडाल ने पहली पेनल्टी ली, जिसे अर्जेंटीनी गोलकीपर रोमेरियो ने अपने बाईं ओर डाइव लगाकर रोक लिया। लेकिन इसके बाद दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में पूरी अर्जेंटीनी टीम तब सन रह गई जब लियोनेल मेसी द्वारा लगाई गई लेफ्ट फुटर किक गोल बॉक्स के बाईं ओर से बाहर निकल गई।
Can Messi put Argentina in front? He missed it! Stunning. Truly remarkable. As he steps up, Claudio Bravo knows him very well. He dives the wrong way. Messi, unlike Vidal, does hit it with power. Straight over the bar. Incredible two players like a Vidal.
अगर मेसी गोल कर देते तो उनकी टीम को 1-0 की बढ़त मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेसी को मनोवैज्ञानिक रूप से इतना बड़ा झटका लगा कि जब तक पेनल्टी शूटआउट चलता रहा वे अपने साथियों के साथ बेहद निराश भाव से खड़े रहे। उनके दोनों हाथ कान पर थे और सर झुकाए मानो वो मन ही मन अपने आप को कोस रहे हों। अर्जेंटीना के फाइनल हारते ही उनका चेहरा आंसुओं से डूब गया और मैच समाप्त होने के केवल 10-12 घंटों के भीतर ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह दिया। वैसे लियोनेल मेसी अपने क्लब बार्सिलोना के लिए खेलते रहेंगे। इसे इत्तेफाक ही कहा जा सकता है कि पिछली बार भी चिली ने फाइनल में अर्जेंटीना को ही हराया था। 29 साल के मेसी ने साल 2005 में पहली बार अर्जेंटीना के लिए मुकाबला खेला। उन्होंने अर्जेंटीना के लिए कुल मिलाकर 113 मैचों में 55 गोल किए। साल 2014 में मेसी ने अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में भी पहुंचाया, जहां जर्मनी ने अर्जेंटीना को 1-0 से मात दी। लेकिन मेसी उस अर्जेंटीनी टीम के सदस्य थे जिसने साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता। ये मेसी ही थे जिन्होंने साल 2005 में नाइजीरिया के खिलाफ फाइनल में 2 गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से जीत दिलाते हुए फीफा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप दिलाने में मदद की। वैसे तो पुर्तगाल के रोनाल्डो भी वर्तमान समय में महान खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन मेसी शायद दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में अपने शवाब पर रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कहा हो।
मैंने जाने माने फुटबॉल पत्रकार नोबी कपाडिया से संपर्क किया और पूछा कि मेसी के इस फैसले को आप भावनात्मक फैसला कहेंगे या उनमें 1 या 2 साल की फुटबॉल अभी और बची हुई थी।
अर्जेंटीना पे हमेशा सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि बस के मेसी सब कुछ करे, वो फुटबॉल में तो पॉसिबल नहीं है, क्रिकेट नहीं है कि वो एक आदमी सब कुछ कर सकता है। तो इसीलिए मेसी पे बहुत ज्यादा दबाव था और एक वो बहुत पेशेंट अच्छे टेम्परमेंट के आदमी थे, वो बिल्कुल तंग आ चुके, फ्रस्ट्रेटेड होके उन्होंने छोड़ दिया और उन्हें फेडरेशन से भी कभी सपोर्ट नहीं मिला।
अगर टॉप फुटबॉलर्स की बात की जाए तो पेले, माराडोना, जिदान, इन सब की लिस्ट में आप मेसी को किस जगह पर रखेंगे ऑल टाइम ग्रेट फुटबॉलर्स में?
ग्रेट में गिनेंगे, लेकिन मैं पेले और माराडोना से एक कदम पीछे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अपने देश के लिए कभी जीत नहीं सके और जितने बड़े मैच होते उसमें वो दबाव नहीं ले पाते। वो एक अच्छे इंसान है लेकिन मेंटली टफ फुटबॉलर नहीं है। मैराडोना तो था कि चोट खाने पे भी वो माँ की बहन की गाली मैंने अर्जेंटीना के इक्विवेलेंट भाषा में, स्पेनिश भाषा में बोल के लड़ने जाते थे। मेसी में वो ये नहीं था, लेकिन बिल्कुल फुटबॉल के इतिहास में एक बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी गिने जाएंगे।
अगर उनके करियर की खास बात की जाए, उनके स्ट्रेंथ की बात की जाए तो क्या कहेंगे, क्या खास बात थी फुटबॉलिंग सेंस में, क्या बेहतर चीज थी उनके पास?
बैलेंस, ड्रिबलिंग स्किल, सेंस ऑफ अनएक्सपेक्टेड, कभी भी छोटे एंगल से गोल कर जाते थे, नैरो एंगल से गोल करते थे, और टेम्परमेंट, देखो कितनी मार पड़ी है उन्हें, उन्होंने कभी रिटेलिएट नहीं किया, कभी झगड़ा नहीं किया। तो एक शानदार इंसान, रॉजर फेडरर की तरह, जीते भी बहुत है बार्सिलोना के लिए, भी 4 यूरोपियन चैंपियंस लीग जीते, 8 लीग टाइटल जीते, बड़ी कठिन लीग में, जो भी है अर्जेंटीना को विश्व कप फाइनल भी ले गए है, 3 कोपा अमेरिका फाइनल, लेकिन जो अंतिम किताब था जो मैराडोना ने 1986 में लड़ झगड़ के अर्जेंटीना को दिलाया, वो नहीं दिखा पाएंगे, उन्हें भी हमेशा जिंदगी भर दुख रखेंगे। लेकिन एज अ प्लेयर, जो उनका बैलेंस, ड्रिबलिंग स्किल्स और जो अनएक्सपेक्टेड शॉट और फ्री किक लेते थे, वो इस जनरेशन के सबसे दिग्गज खिलाड़ी।
नोवी, थोड़ी सी बात करें, चिंक्स इन द आर्मर, क्या कमी थी उनके खेल में?
मेंटल टफनेस और कोई भी कमी नहीं।
या हर मूव को खुद फिनिश करने की आदत?
फिनिशर तो खैर मैराडोना में भी इतने ग्रेट नहीं थे, फिनिश तो नहीं करते थे, लेकिन देखो अर्जेंटीना के लिए उनके अपने प्लेयरों ने भी पूरा सपोर्ट नहीं दिया। हिगुआइन ने कितने सुनहरे मौके मिस किए, हिगुआइन आज गोल कर लेते जब बिल्कुल फ्री थे तो आज मेसी हीरो गिने जाते, 1-0 से अर्जेंटीना जीत जाती, विश्व कप फाइनल में भी जर्मनी के अगेंस्ट हिगुआइन ने मिस किया। मेसी का जब असली तरह, जब लोग नॉर्मल हो के इसकी पूरी तरह एनालिसिस करेंगे तो पता लगेगा कि मेसी ने तो किया है, उनके टीममेट से पूरी तरह सपोर्ट नहीं मिला, इसीलिए अब सारे लोग भी रिटायर हो रहे, मैशरोनो, हिगुआइन, अगुएरो, सभी रिटायर हो रहे।
तो आप समअप करेंगे उनके जीवन का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट विश्व कप न जीत पाना?
विश्व कप ना जीत पाना सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट, और मेरे ख्याल से आज, क्योंकि उनके पेनल्टी के मिस होने से अर्जेंटीना ये कोपा सेंटेनरी नहीं तो ये जीत जाती, ये एक ऐतिहासिक प्रतियोगिता था, तो ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट।
ये थे जाने माने फुटबॉल पत्रकार नोवी कपाडिया।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज 7वीं बार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। इसके तहत कुल 5 नए मंत्री शामिल किए गए हैं। मंत्रिमंडल में विस्तार से पहले ही राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री मनोज पांडे को हटा दिया गया। राज्य में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को राजनीतिक दलों ने सामाजिक समीकरण साधने की कवायद बताया है। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 4 साल पुराने अपने मंत्रिपरिषद में आज 3 नए चेहरे शामिल किए। जियाउद्दीन रिजवी देश से बाहर होने के कारण शपथ नहीं ले सके, लेकिन लखनऊ के 2 विधायकों रविदास मेहरोत्रा और शारदा प्रताप शुक्ल ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं बलराम यादव और नारद यादव ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली और ये अखिलेश सरकार में पहले भी मंत्री रह चुके हैं। बलराम यादव तो पिछले हफ्ते तक मंत्री थे, लेकिन सबसे चौंकाने वाला फैसला रहा कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे को बाहर का रास्ता दिखाने का। कैबिनेट विस्तार के फैसले पर पार्टी प्रवक्ता मोहम्मद शाहिद कहते हैं,
समाजवादी पार्टी कभी भी जात, कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करती। जो कैपेबल है, हमने आपको पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है किसको मंत्रिमंडल में रहना है, किसको नहीं रहना है। ये जरूरी नहीं है कि हम कोई, अगर जो हमने मंत्रिमंडल में किसी को शामिल किया है तो उसको किसी जात और किसी धर्म के रूप में नहीं देखना चाहिए। जिस तरह से मंत्रिमंडल को पूरा होना चाहिए था, उस नाते मंत्रिमंडल को पूरा किया गया है।
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिपरिषद के इस शायद आखिरी विस्तार को चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। सामाजिक समीकरण साधने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन शपथ ग्रहण में वरिष्ठ मंत्री शिवपाल सिंह यादव का न आना चर्चा का विषय रहा। मुख्तार अंसारी की पार्टी के विलय को नकारने के बाद से ही शिवपाल और अखिलेश में नाराजगी की चर्चाएं थीं और आज इन चर्चाओं की जैसे पुष्टि हो गई, लेकिन मोहम्मद शाहिद ऐसा नहीं मानते।
समाजवादी परिवार में किसी तरह का न मतभेद है, ये जो कुछ मीडिया के लोग ये मतभेद बढ़ाने की बात करना करते हैं, ये ऐसा हमारे समाजवादी पार्टी में न मतभेद है न किसी तरह का मतभेद है। समाजवादी पार्टी एक थी, एक है और एक रहेगी।
वही चुनाव से महज कुछ महीने पहले होने वाले मंत्रिपरिषद विस्तार की राजनीतिक दलों ने आलोचना की है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि इससे न तो जनता का कोई भला होने वाला है और न ही सरकार का। कांग्रेस प्रवक्ता सत्यदेव त्रिपाठी कहते हैं,
इससे न तो कोई इनकी सरकार की इमेज बदलेगी और न कोई इससे बड़ा फायदा होगा। ये तो नई बोतल में पुरानी शराब है और कुछ है। सिर्फ इसलिए कि 4-6 लोग जो बहुत नाराज थे उन्हें खुश करना था। उन्होंने एक ब्राह्मण हटाया तो ब्राह्मण रखना था, मनोज पांडे को हटाया तो शारदा प्रताप शुक्ला को रख लिया। ये देखिए कास्टिक किस तरह के लोग हैं, ये हमेशा ये गुणा भाग तो करते रहते। एजेंडा तो वही जातियों का समीकरण है और कुछ है नहीं। इनके पास कानून व्यवस्था के नाम पे जीरो।
बहरहाल संवैधानिक रूप से अधिकतम मंत्री रखने की जितनी गुंजाइश थी अखिलेश सरकार ने वो पूरी कर ली है। राजनीतिक दलों के साथ साथ जानकारों ने भी चुटकी ली है कि अब तो चाहकर भी किसी को खुश नहीं किया जा सकता, किसी एक को खुश करने के लिए किसी को नाराज करना ही पड़ेगा। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
सोमवार को आप करते हैं इंतजार अपने पत्रों का। आपके पत्रों के साथ हैं स्वाति बख्शी और मोहनलाल शर्मा।
आपकी राय, आज आपकी चिट्ठियों के साथ मैं हूं मोहनलाल शर्मा और मेरे साथ स्वाति बख्शी मौजूद हैं।
जी हाँ, और मैं सारी चिट्ठियां देख रही हूं कौन सी पहले पढूं और कौन सी बाद में।
सबसे पहले पढ़नी सारी हैं,
कोशिश यही रहेगी। मैं पोस्टकार्ड उठा रही हूँ। सबसे पहले गंगा सिंह रावत का है, हल्द्वानी से, नैनीताल उत्तराखंड से लिखते हैं। कह रहे हैं कि 18 जून को जो कार्यक्रम इंडिया बोल पेश किया था उसके बारे में आपको ये बताना चाहते हैं कि कैराना में पलायन का जिस तरह राजनीतिक दलों ने राजनीतिकरण कर दिया है वह जितना दुखद है उतना ही शर्मनाक है, और इसके लिए राजनीतिक दलों की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम होगा, क्योंकि अपनी रोटियां सेकना पार्टियों का आम चलन बन गया है।
गंगा सिंह रावत जी की ये चिट्ठी है, और गंगा सिंह रावत जी मुझे याद है, ये कार्यक्रम जो इंडिया बोल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये कार्यक्रम मैंने ही किया था, और इसमें कोशिश हमने की थी कि समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे पर काम कर रही हैं, राजनीति कर रही हैं, उनसे सीधे सवाल पूछे जाएं, ताकि खबरें तो हम आप तक पहुंचा ही पाएं, राजनीतिक दल क्या सोचते हैं वो भी सीधी बातें आप तक पहुंच पाएं। तो गंगा सिंह रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया चिट्ठी लिखने के लिए।
बहुत कम महिला श्रोता हमें चिट्ठियां लिखती हैं।
अच्छा, चिट्ठी
जी,
महिला श्रोता, वाह
जी,
क्या
करिश्मा
क्या
राठौर की चिट्ठी है, विचोला जिला कासगंज पोस्ट सिद्धपुरा उत्तर प्रदेश से इन्होंने लिखा है, और कह रही हैं कि BBC की फैन हूं। सुझाव इन्होंने एक दिया है कि आप पहला उजियारा फिर से शुरू करें और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर एक विशेष रिपोर्ट बनाकर कड़ियों में पेश करें। इसके अलावा इन्होंने हमारे जो साप्ताहिक कार्यक्रम है उनकी तारीफ की है।
पहला उजियारा का अगर जिक्र करें तो ये घूम के बात मेरे पास ही आती है, तो हम अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि जो पहला उजियारा की जो बाकी कड़ियां हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और जैसे ही वो काम पूरा होगा वो सारी की सारी कड़ियां आपको सुनने को मिलेंगी। और रही बात आपने 1857 की क्रांति से संबंधित एक रिपोर्ट की बात की है, सीरीज की बात की है, तो आपका सुझाव निश्चित तौर पर हमारे पास आ गया है, और जैसे ही वक्त मिलेगा हम इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। अगली चिट्ठी क्या है?
तीन और पोस्टकार्ड्स हैं जिसमें से मुझे लगता है मैं एक ही पढ़ पाऊंगी। दिलावर हुसैन कादरी का है,
बहुत पुराने श्रोता
जी, जैसलमेर राजस्थान से इन्होंने लिखा है, और कह रहे हैं कि फिर वही ढाक के तीन पात, हमें BBC इंडिया बोल से महरूम होना पड़ा, आखिरकार राजेश जोशी जी की भविष्यवाणी गलत साबित हुई, फिर भी उम्मीदों का दामन अब तक छोड़ा नहीं है, क्योंकि आप हमें BBC इंडिया बोल में शामिल करें या ना करें, खत शामिल करें या ना करें, हम जुड़े रहेंगे।
नहीं कादरी साहब, देखिए आपकी अगर ये शिकायत है कि आपका खत शामिल नहीं हुआ तो भाई खत तो हमने शामिल कर लिया। और रही बात BBC इंडिया बोल की, हमारे हजारों श्रोता हैं जो कि लगातार एक ही समय पर हमें फ़ोन कर रहे होते हैं, अब कुछ श्रोता हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन पाते हैं और कुछ श्रोता नहीं बन पाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी, निश्चित तौर पर मिलेगी।
फारूक अब्दुल्ला फिजा का एक और पत्र है लक्ष्मीपुर रक्सौल से,
इन्होंने अपने लेटर पैड पर ही लिख
दिया। जी हाँ, और इन्होंने दिव्या आर्या की बहुत तारीफ की और ये कह रहे हैं कि उनकी जो रिपोर्ट प्रस्तुति का जो तरीका है वो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
तमाम हमारे और श्रोता भी हैं जिनको कि दिव्या आर्या की जो रिपोर्टिंग है वो बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी ये जो भावनाएं हैं वो हम दिव्या आर्या तक पहुंचा देंगे।
रिजवान अंसारी का सुपौल बाजार दरभंगा से ईमेल है, इनका कहना है कि आपके कार्यक्रम तो बेहतर हैं लेकिन आप लोग कुछ दिनों से आलसी हो गए क्योंकि ठीक से कोई भी समाचार डाउनलोड नहीं होता और आप लोग इसे ठीक नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ इंटरनेट का सहारा है पर बिना डाउनलोड के हाँ, समाचार नहीं सुन पाते।
स्वाति, लगातार हम ये बात अपने श्रोताओं को भी कह रहे हैं कि ये एक तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से आप डाउनलोड नहीं कर पाते हमारे कार्यक्रम, लेकिन इस पर हम लंबे समय से काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो दिन भी जल्द ही आएगा जब आप हमारे कार्यक्रम को डाउनलोड कर पाएंगे।
एक और ईमेल है आशुतोष कुमार पांडे का, गाँव पांडेपुर पोस्ट निमेज बक्सर बिहार से, और इन्होंने कहा है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जो बातचीत हुई थी वो इन्हें ज्यादा पसंद नहीं आई है और कहना इनका ये है कि आपसे कई बार अनुरोध किया है कि रामदेव जो हैं, बाबा रामदेव, उनका इंटरव्यू आप लोग करें पर पता नहीं क्यों आप चुप्पी साधे हुए हैं।
आशुतोष पांडे जी, आपने बाबा रामदेव के इंटरव्यू की बात की है, साक्षात्कार की बात की है, आपका सुझाव हमारे पास आ गया है और हम भी कोशिश करते हैं कि उनसे अगर कोई समय हमें मिल पाए तो हम निश्चित तौर पर उनसे बात करेंगे और तमाम सवाल भी पूछेंगे। तो बस थोड़ा सा धीरज धरना होगा और अब मेरे ख्याल से इतना
वक्त नहीं है
कि और चिट्ठियाँ हम ले पाएं।
नहीं।
तो पता एक बार नोट कर लें, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003।
और अगर आप ईमेल लिखना चाहते हैं तो hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
आज विश्व की चार बड़ी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में से एक विंबलडन प्रतियोगिता शुरू हुई है, पहले राउंड के मुकाबले चल रहे हैं। हमारे साथी आदेश कुमार गुप्त इन मैचों पर नजर रखे हुए, बताइए क्या समाचार है विंबलडन से।
जी देखिए, अगर विंबलडन से बात की जाए तो पुरुष एकल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच, तीसरी वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर, महिला एकल वर्ग में दूसरी वरीयता हासिल स्पेन की गार्बिन मुगुरुज़ा, आठवीं वरीयता हासिल अमरीका की वीनस विलियम्स और पांचवी वरीयता हासिल रोमानिया की सिमोना हालेप के मुकाबले जारी हैं और निश्चित रूप से इन पर सबकी नजरें हैं। लेकिन जो मुकाबले समाप्त हुए उनमें 14वीं वरीयता हासिल ऑस्ट्रेलिया की समांथा स्टूसर ने गैर वरीयता हासिल पोलैंड की मैग्दा लिनेटे को 7-5, 6-3 से बात दी, जबकि पुरुष एकल वर्ग में फ्रांस के एड्रियान बेनारिनो ने ब्रिटेन के काइल एडमंड को 6-2, 7-5, 6-4 से हला। इनके अलावा फ्रांस के पीरे ह्यूज हर्बर्ट ने जर्मनी के फिल कोलश्राइबर को 7-5, 6-3, 3-6, 6-3 से हराया। 9वीं वरीयता हासिल क्रोएशिया के मारिन चिलिच भी जीतने में कामयाब रहे और उन्होंने अमेरिका के ब्रायन बाकर को 6-3, 7-5, 6-3 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं यूक्रेन के सर्गेई इस्ताखोवस्की ने जापान के योशिहितो निशियोका को 6-3, 6-4, 6-4 से मात दी। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया के इवो कार्लोविच ने अपने ही हमवतन पोर्न सोरिस को 7-6, 7-6, 6-4 से हराया। उधर यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में कल जर्मनी ने स्लोवाकिया को 3-0 से हराया। जर्मनी के लिए बोटेंग ने 8वें, गोमेज ने 43वें और ड्रेसलर ने 63वें मिनट में गोल किए। इसके साथ ही जर्मनी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। इसके अलावा कल बेल्जियम ने हंगरी को 4-0 से करारी मात दी। अब बेल्जियम क्वार्टर फाइनल में 1 जुलाई को वेल से भिड़ेगा। उधर आज होने वाले मुकाबलों की बात की जाए तो इटली का सामना स्पेन से होगा और इंग्लैंड का सामना आइसलैंड से होगा। अब देखना यह कि इटली की टीम जो कि पूरी फॉर्म में है और अगर स्पेनिश खिलाड़ियों की बात की जाए तो काफ़ी दमदार खेल अभी तक वो दिखाते आए हैं, और अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो रूस से जब वो मुकाबले पर उतरे तो उनके समर्थक जिस तरह से हुड़दंग मचाते हुए नजर आए, अब देखना है कि कितनी शांति के साथ वो मुकाबले को खेलते हैं।
दिलचस्प मुकाबले होने की उम्मीद। बहुत बहुत धन्यवाद आदेश आपका। और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन छोड़ने के बाद फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्रियों ने यूरोपीय यूनियन को मजबूत करने का संकल्प लिया है। अपने साझा बयान में जॉ मार्क एरो और फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर ने यूनियन को राजनीतिक योजना को आगे ले जाने की बात कही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के बारे में पार्टी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की टिप्पणियों को अनुचित करार दिया है। अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया है, यानी अब वो अर्जेंटीना का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, हालांकि वो अपने क्लब बार्सिलोना के लिए जरूर खेलेंगे। यूरोपीय यूनियन के जन्मत संग्रह के दौरान हुई नस्ली घटनाओं के मद्देनजर ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि असहिष्णुता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने अपने मंत्रियों को प्रवासियों के खिलाफ की गई किसी भी असभ्य घटना की निंदा करने को कहा है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाला था अजीत साथी ने। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।